रामलीला मैदान में आए हुए आप सब कार्यकारियों को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ वक्ताओं को सुन रहा था तो किसी ने कहा कि 5 वर्ष पहले रामलीला मैदान में जो ऊर्जा थी वो आप लोगों में नहीं दिख रही। मैं इस बात पर प्रसन्न हूँ कि चलो हम इस बात पर चर्चा करने को तो तैयार है कि हमारी ऊर्जा कहीं कहा, लेकिन अपने संबोधन से पहले मैं आज 26/11 के दिन उन शहीदों का स्मरण करना चाहता हूँ जिन्होंने भारत की औद्योगिक राजधानी मुंबई पर हमला किया और तुकाराम मुंगले जैसे सैनिक ने अपना सीना अड़ाकर पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए अब्दुल कसाब को अपनी बाहों में जकड़ा और हिंदुस्तान का माथा ऊपर किया। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी यहां से आवाज मुंबई तक आपकी तालियां और उठे हुए हाथों में दिखती है। एक बार पीछे से जोरदार तालियां बजाकर प्रणाम करिए उन सबसे जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध यह भी है कि हम सब ने इस देश को सोशल मीडिया का प्रयोग सिखाया, हम सब ने इस देश को फेसबुक लाइव का प्रयोग सिखाया, इसलिए जितने भी लोग हैं और जिन पर संभव है वो मेरे आज के संबोधन को रिकॉर्ड कर लें और रात को सोने से पहले सुने और लोगों को भी सुनवाए। हो सकता है कि इतिहास बदलने की प्रक्रिया में हम जो थोड़े बदले हों तो हम उसी सही रास्ते पर आ सकें। मेरे लिए यह भावुक पल है, आंदोलन उस ऊंचाई से शुरू हुआ था जहां वो मंच बना हुआ है और आज हम यहां खड़े हुए हैं। आंदोलन के आखिरी हिस्से पर रात 11 बजे आकर आदमी मंच को देखकर प्रणाम करता था और कहता था यहां से क्रांति की चिंगारी निकलने वाली है। दोस्तों, जिस समय हमने आंदोलन शुरू किया उस समय हमसे किसी को उम्मीद नहीं थी, हमसे कोई कहने नहीं आया था, हमारे घर कोई निवेदन करने नहीं आया था कि आओ देश आपको पुकार रहा है, आप नहीं बोले तो क्या होगा। हम 3, 4, 5, 10, 20 सरफिरे लोग थे, अपनी सुविधाओं में दबे ढके भी हमारे अंदर ये आग जलती थी, इस देश को गलवाड़ी अपने भ्रष्टाचार में ले रहे हैं, पूरा देश चुप है, कांग्रेस की सरकार और भाजपा चुप है, टेलीविजन बोल नहीं पा रहा है, लोग क्रिकेट में लगे हुए हैं। हम चंद लोग अपने सिर पर कफन बांधकर अपने हाथ में तिरंगा लेकर निकले तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोग सरकार छोड़ने के लिए सड़क पर आ गए और इस देश की सरकार को ध्वस्त करने का उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। लेकिन आज देश को हमसे उम्मीद है, आज देश हमें सुनना चाहता है। मैं पिछले 7-8 महीनों से बोला नहीं, एक नेशनल काउंसिल हुई उसमें वक्ताओं में मेरा नाम नहीं था। आज मंच पर आप सबने मुझे अवसर दिया है बोलने का, लेकिन पिछले 7 महीनों में हजारों कार्यकर्ताओं से मिलकर मैंने ये जाना कि अगर 5 महीने न बोलने देने के कारण मेरे अंदर इतनी बेचैनी है तो जो 5 साल से नहीं सुने जा रहे उन कार्यकर्ताओं में इतनी बेचैनी है। और मुझे लगता है मेरे जैसे हरेक क्रांति के सबसे पहले सिपाही के लिए संकेत है कि हम आपको सुनने की मानसिकता में आए हैं। अपने संबोधन और राजनीतिक परिदृश्य पर टिप्पणी करने से पहले मैं 2 लोगों को याद करना चाहता हूं इस मंच पर। एक तो रालीगंज सिद्धी का वो बूढ़ा फकीर अन्ना हजारे जिसने इस मंच पर खड़े होकर हम जैसे हजारों करोड़ों नौजवान को खड़ा कर दिया था। आज कुछ लोग जो अन्ना हजारे की कृपा से ही चमके हैं हम में से वो अन्ना पर टिप्पणी करने से नहीं पा जाते, लेकिन हजारों कार्यकर्ता ये कहना चाहते हैं कि अन्ना हम आपको प्रणाम करते हैं, आप जहां आए आप विश्राम करिए, आप इस आंदोलन के जनक हैं, हम इतने नाकारा बेटे बेटियां भी नहीं कि मकान बनवाने के बाद कमरे उठवाने का भी आदेश आपको दें, हम भारत का निर्माण खुद कर सकते हैं। दूसरा मैं स्मरण करना चाहता हूं अपनी बहन आंदोलन की नेता और जिसने मुझे से छोटे भाइयों को यह सिखाया कि आंदोलन में आने के लिए किसी विशेष पद पर किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, लच्छेदार भाषण की आवश्यकता नहीं है, चमत्कारी व्यक्तित्व होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सुंदर नगरी की एक छोटी सी गली में दलित के परिवार में पैदा हुई हो और आपके अंदर सच की आग है तो तो मैं अपनी उस दिवंगत बहन संतोष कोहली को स्मरण करना चाहता हूं जिसे हम भूल गए। बहुत सारे लोग हैं, एलओसी कारगिल में गाना था, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। बहुत सारे लोग हैं जो इस आंदोलन से चले गए, कुछ अपनी नाराजगियों की वजह से चले गए हैं, कुछ हमारी संवादहीनता की वजह से चले गए हैं, कुछ हमारे अहंकार अहमन्यताओं की वजह से चले गए हैं, कुछ गलतफहमियों की वजह से चले गए हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं कि आप जब तक हमारे साथ रहे हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमें याद रखिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आज 5वें साल के जश्न में हमारे मन से हमारी आत्मा से दुआ निकलेगी, हम सब लोग उनके घर दरवाजे पर दोबारा पहुंचेंगे और कहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री जिसमें कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लगे हुए दागी लोग अपने दाग धुलवा कर इकट्ठे हो सकते हैं, तो वे ईमानदार लोग जो अन्ना के आंदोलन में इकट्ठे हुए थे, क्या वो हिंदुस्तान बचाने के लिए एक नहीं हो सकते? सारे एक साथ आ सकते हैं। वो छोड़े अपना अपना दल, वो छोड़े अपने अपने संगठन, अगर उनका संगठन आम आदमी पार्टी से बड़ा है तो हम सब उनके झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे, और अगर हम लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने बड़ा संगठन बना लिया है तो आप कृपया हमारे बीच आ जाइए, हमारा मार्गदर्शन करिए, हमारे नेता बन जाइए। मैं राजनीतिक हालातों पर बोलने के लिए मुझे कहा गया है, मैं उस पर भी बोलूंगा, लेकिन मैंने आज तक एक ऐसा मरीज नहीं देखा जो अस्पताल ठीक कर सकता हो, मैंने ऐसी कोई गृहिणी नहीं देखी जो ये कहती हो कि मैं बाहर चबूतरे पर झाड़ू लगा लूंगी लेकिन घर साफ नहीं करूंगी। राजनीतिक परिदृश्य में हम भी आते हैं, हमें स्वयं के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हम 3 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले कहां से चले थे और कहां आ गए। लेकिन उससे पहले आप सबके श्रम बल से, आपके तपोबल से, आपकी क्षमताओं से बनी हुई दिल्ली की सरकार और उसके शानदार कामों के लिए मैं दिल्ली की सरकार को बधाई देता हूं, हजारों कार्यकर्ताओं की। मैं दिल्ली के निष्काम सेवी विधायकों को बधाई देता हूं, आप सबकी ओर से बधाई देता हूं जो अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। मनीष यहां पर बैठे हैं, उन्होंने शिक्षा में जो काम किया है मैं उसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूं कि उनका सपना पूरा हुआ है शिक्षा में काम करने का। हमारे मुख्यमंत्री ने और पूरी सरकार ने पूरे भारत को दिखाया है कि न्यूनतम साधनों में और केंद्र के भयानक भीषण अनुशासन के बीच भी हम अच्छी सरकार चला सकते हैं, लेकिन हमारे कामों में कहीं कमी भी रही हो उन्हें हम अकेले में बैठ कर चर्चा करें, और इसी चौराहे पर सबको आमंत्रित करने वाले लोग यहाँ यही बहस करते हैं, हम यहाँ भी एक दूसरे के साथ संवाद करें, हम यहाँ भी तय करें कि हम क्या है। क्या हमें नहीं लगता कि 5 वर्ष पहले वहां जहाँ चले थे वहां से हम थोड़ा किसी दूसरी तरफ भी गए हैं, हमें सही मार्ग पर पहुंचना है जहां से हम चले थे। जब हम आंदोलन कर रहे थे तो कलमाडी के लगातार भ्रष्टाचार पर मैंने अपने दोनों वरिष्ठ साथियों से पूछा था कि इतना देश में आंदोलन चल रहा है, सोनिया गांधी को जरा जूनी नहीं थी कानून, उसको लगता नहीं है कि लोग उसको वोट नहीं देंगे, उनके पास जवाब नहीं था क्योंकि वो राजनीतिक लोग नहीं थे। लेकिन कांग्रेस कार्यालय के अंदर के सूत्रों से पता चला कि सोनिया जी का मानना है कि देश के लोग भूल जाते हैं, चुनाव आते आते सब भूल जाते हैं। आजकल हम लोगों में से कुछ का मानना है कि कार्यकर्ता चुनाव आते आते सब भूल जाते हैं, लेकिन मुझे कहना है कि हम ही वो लोग हैं कि 2007 से लेकर 2013 तक 5 साल जो देश को सब कुछ भुला देना चाहते थे चौराहे चौराहे गए और इस देश को याद दिलाया कि श्रेष्ठ कांग्रेस को हमें उखाड़ कर फेंकना है दिल्ली की सरकार से, और हमें गटर का कीड़ा कहने वाली अहंकारी महिला की कुर्सी एक सामान्य व्यक्ति के हाथ पहुंचाई, हम ही और आप सब लोग यहां पर बैठे हुए। तो आप सबसे यह भी अनुरोध है, चौराहे पर आप जाइए तो दो बातें चल रही हैं, दिल पर हाथ रखकर सच बताना भाई, एक तो बस में ट्रेन में हर जगह आदमी कह रहा है कि मोदी से कुछ नहीं हो सकता, ये हर चौराहे पर आदमी बात कह रहा है कि भाई इस सरकार से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आधा घंटे की बहस के बाद कहता है वो तो ठीक है पर वोट किसे दे। हम ये नहीं चाहते कि 3 साल हमने पसीना बहाया खून बहाया और हमारे पसीने खून पर कांग्रेस के खिलाफ पैदा हुआ आक्रोश मोदी जी अपने सर पर ताज पहनकर बैठ गए 2014 में। अगर ये देश भर से आए हुए कार्यकर्ता अपनी अपनी राजधानियों में लड़े तो पार्टी का नेतृत्व और पार्टी के हम सब कार्यकर्ता ये तय करें कि 2019 में कांग्रेस सत्ता में नहीं बैठेगी, हम जिसे चाहेंगे उसे। मैं रास्ते पर आया हूं होर्डिंग और पोस्टर देखते हुए। होर्डिंग और पोस्टर पर मैं देखता हूं कि कैसे कैसे नाम आप लोग लगाते हैं। यही तो दूसरी पार्टियों के काम थे, बड़ा गणपति, छोटा गणपति, उससे छोटा गणपति, फिर छोटा गणपति। यही तो कांग्रेस भाजपा करती थी। हम लोग थे, ये टोपी पैसे देकर खरीदी जाती थी, 10 रुपए में टोपी खरीदी जाती थी। लोग तिरंगा झंडा खरीदते थे। हमको तय करना है कि वैकल्पिक राजनीति पर चलना है कि विपक्ष की राजनीति पर चलना है। मैं राजस्थान का कामकाज देखता हूं पार्टी के आदेश पर। मैं राजस्थान के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि पिछले 4 महीनों में उन्होंने वैकल्पिक राजनीति के प्रयोग किए और वहां की अहंकारी रानी ने देश में काला कानून लाने की पहल की, आरटीआई को कुचलने की पहल की और हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। हमने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई और महारानी को अपना काला कानून वापस लेना पड़ा। हमारी पहली विजय। देश भर से आए हुए कार्यकर्ता राजस्थान के उन नौनिहालों के लिए भी तालियां बजाएं जिन्होंने साधन शून्य होने पर दिल्ली की किसी सहायता के बिना अकेले चुनाव लड़ा और 22 राज्यों में काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सीवाईएसएस में पहली बड़ी विजय हुई। हम 50 सीटों पर वहां से जीते। हमने अपने 50 प्रतिनिधियों को और नए लड़कों को निर्वाचित होने दिया। इस बीच हम पर बहुत आरोप लगे, हम पर बहुत हमले हुए, लेकिन हमने रामलीला मैदान से सीखा था कि अपने ऊपर पड़ने वाले हर पत्थर को जोड़कर एक मकान बनाओ और उसमें उन लोगों को भी बसाओ जो हम पर पत्थर फेंकते हैं। हमने रामलीला मैदान से सीखा था कि हम पर उछाली गई सारी चिंगारियों को, सारे अंधेरों को इकट्ठा करो और ऐसा दीपक जलाओ कि हम पर उजाला छीनने वाले लोग के घर भी उजाला हो सके, उनके घर भी बात जा सके। हम रामलीला मैदान में खड़े हैं। मेरे लिए भावुक पल है। मैंने यहां रातें काटी हैं, मैंने यहां आंसुओं से भीगा हुआ वक्त देखा है। जब ये लगता था कि पता नहीं अनशन सफल होगा कि नहीं सफल होगा, अनशन के 10वें दिन मंच पर वो गवाह लोग बैठे हैं, मेरी इनोवा में हम सब सोते थे। दिल्ली पुलिस के एक व्यक्ति ने मेरे घर फोन किया बिना नाम बताए, कैसे हमारा परिवार शामिल था उस लड़ाई में, कैसे हमारे बच्चे शामिल थे। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने फोन किया बिना नाम बताए, मेरी पत्नी से कहा, भाभी जी कुमार भाई का बहुत बड़ा फैन हुआ है, उन्होंने सुना था आज चिदम्बरम जी ने योजना बनाई है, उस समय गृह मंत्री थे, याद है चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उन्होंने योजना बनाई है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर वीके गुप्ता साहब उत्तम नगर थाने में बैठे हैं, रात को 2:48 पर अन्ना को उठाया जाएगा, गोलियां भी चलवाई जाएंगी, कुछ लोग मर सकते हैं, आप भाई साहब को घर बुला लीजिए। मेरी पत्नी ने मुझे मोबाइल पर फोन किया और शायद आप समझ सकेंगे हमारा दर्द, शायद आप समझ सकेंगे मेरा आंसू, शायद आप समझ सकेंगे आखिरी छोर पर खड़े हुए आदमी की व्यथा। मेरी पत्नी ने मुझे फोन करके कहा, आज रात गोली चल सकती है, आज रात उन्ना को उठाया जा सकता है, आप 3 दिन से घर नहीं आए हैं, आज आपने दिन में कहा था आप घर आएंगे, लेकिन आज अन्ना के ऊपर हमला हो सकता है, घर मत आना, वहीं रहना। षड्यंत्रकारी कहते हैं कि हम दूसरी पार्टी में चले जाएं या दूसरी पार्टी में चले तो नहीं जाएंगे। अरे जिस पार्टी को हमने खून से सींचा है, जिस पर हम सबने पसीना दिया है, अगर हमने आज सच और स्वराज का दीपक नहीं जलाया तो दूसरी पार्टी में तो अंधेरा है, वहां कौन हमारा दीपक जलाए। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि आप जैसे कोई आदमी किसी दूसरे राजनीतिक संगठन में जीवित रह सकता है। हमारे लिए राजनीति का पहला और आखिरी पड़ाव है, अगर यह असफल हुआ तो क्रांति के सिपाहियों 40 साल तक मैं अपने बेटों को आंदोलन में भेजना बंद कर दूंगा। लोग कहेंगे हर बार हमारे साथ चोरी होती, लोग कहेंगे हर बार हमारे साथ धोखा होगा, इसलिए यह आंदोलन और इस पार्टी के भीतर जो आंदोलन है, इस पार्टी के भीतर जो सत्य का तत्व है, इस पार्टी के भीतर वही लौटने की जो जिज्ञासा है, उन्हीं मूल्यों पर बने रहना। चाहिए, प्रश्न उठाते रहिएगा। मुझे 5-6 महीनों में यह आभास हुआ है कि आपके प्रश्न कितने जरूरी हैं। अगर यक्ष प्रश्न ना पूछे तो सारे पांडव प्यासे मर जाएंगे। इसलिए हर महाभारत में एक युधिष्ठिर जरूरी है जिससे सवाल पूछेगा। हर महाभारत में प्रश्नों की प्रासंगिकता है, प्रश्नों से बचना, भागना और छिपाना कायरता है। हम सब असहमत लोगों का समूह है। हम सब लोगों को जो काम दिया गया वो हमने करा है। लोकपाल आंदोलन के समय में विश्वविद्यालय की नौकरी करता था, मुझसे मेरे साथियों ने कहा ड्राफ्टिंग कमेटी में तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम उस मंच से माइक संभाल कर लोगों को संबोधित करना है पूरे देश को। मैंने कहा मैं ठीक है यही काम करूंगा। आपसे हमने कहा आप अमेठी चले जाइए, वहां जाकर लड़िए, सीना लड़ाकर आप 5 महीने लड़े। हमने कहा बनारस जाइए, आप बनारस जाकर लड़े। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता देश का सबसे अनुशासित, सबसे मजबूत और चने खाकर लड़ने वाला सिपाही है। मंच पर जो लोग सरकार चलाते वो ये बात जानते हैं कि ये कार्यकर्ता ट्रांसफर कराने नहीं आता, ये पोस्टिंग कराने नहीं आता, ये ठेकेदारी मांगने के लिए नहीं आता, लेकिन ये अंदर के सच को सुनने के लिए जरूर आता है। ये जरूर चाहता है कि इसे सच पता चले और सच साथ रहे। आंदोलन को खत्म करने का एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है, आंदोलन समाप्त करने का एक तरीका है, आंदोलन को चेहरों में बदल दो, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। बहुत चाह अंग्रेजों ने कि आजादी के आंदोलन को गांधीयन मूवमेंट बना दिया जाए। 1930-1928 के अंग्रेजों के कागज पढ़िए, अंग्रेज लिखते हैं हिंदुस्तान में गांधीयन मूवमेंट चल रहा है। गांधी ने कहा यह मेरा मूवमेंट नहीं है, ये 33 करोड़ हिंदुस्तानियों का मूवमेंट है। इसलिए दोस्तों प्राथमिकताएं बदलिए, पहले नंबर पर रखिए देश, पहले नंबर पर क्या आवाज नहीं आई, पहले नंबर पर क्या, दूसरे नंबर पर दल, दूसरे नंबर पर क्या, दूसरे नंबर पर क्या, और तीसरे नंबर पर रखिए नेता। स्वार्थी लोग क्या करते हैं, वो पहले नंबर पर नेता, दूसरे पर दल और तीसरे पर देश रखते हैं। और ये देश भर की सारी पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं। दोस्तों यही कारण है कि 70 साल में इस देश में पार्टियां बड़ी हुई, नेता बड़े हुए, देश बड़ा नहीं हुआ। आइए आम आदमी पार्टी में हम संकल्प लेते हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता 2010 से जो पहले देश की थी वो हमारी पार्टी में रहे। लोग कहते हैं कि फुल टाइम पॉलिटिशियंस होने चाहिए, मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं, मैं फुल टाइम हिंदुस्तानी और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूं। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि आप सब भी ऐसे ही बन जाइए। उसका एक सामान्य कारण है, हर व्यक्ति के पास अपनी एक जीविका होनी चाहिए। मेरे पास 5 दिन की जीविका है, मैं 5 दिन के सम्मेलन में जाता हूं तो मैं ईमानदारी के साथ पार्टी का काम कर सकता हूं। 25 पैसे का कोई आरोप पत्र नहीं लगा पाया पिछले 6 साल में आज तक, और लगा भी नहीं पाएगा कोई आरोप। इसलिए आप सब अपना काम करिए, जिस नौकरी में हो वहां बैठकर आम आदमी पार्टी की बात करिए, जिस दुकान में हो वहां आम आदमी पार्टी की बात करिए, किसान हो तो खेत में आम आदमी पार्टी की बात करिए। और इन पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर से पूछिए, जब ये कहें कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, मुझसे एक नेता ने कहा एक पार्टी के, आपकी सरकार आ गई, आप इतने बड़े व्यक्ति हो, इतने महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हो, फिर भी कम सम्मेलन करते हो। मैंने जब सवाल पूछा उस पर आपकी तालियां चाहूंगा। मैंने कहा मैं 5 दिन कमाता हूँ, 20-30 लाख रुपए का टैक्स देता हूँ, तब जी पाता हूँ। दोस्त मुझे तुम ये बताओ कि ना तुम किसी पार्टी के पद पर हो, ना तुम मंत्री हो, ना तुम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, फिर भी तुम्हारी जैकेट कहाँ से आती है, तुम्हारी हवाई जहाज के टिकट कहाँ से आते हैं, तुम्हारे चमचे का फंड कहाँ से आता है। बेईमानी के साथ कमाए गए पैसे से ईमानदारी की राजनीति नहीं हो पाएगी। इसलिए 5 दिन काम करिए। इसलिए हमारे विधायक गढ़ बैठे, इनके वेतन की बढ़ोतरी के लिए सरकार के साथ हम 24 घंटे खड़े हैं, क्योंकि कम से कम इन्हें इतना वेतन मिलना चाहिए कि इनके दरवाजे पर आने वाले 2000 लोग जो दिन भर में आते हैं वो चाय पी सके, उसके लिए इन्हें किसी ऐसे काम की आवश्यकता ना पड़े जो हमारी ईमानदार राजनीति पर अंकुश लगाए। हमें जरूरत है वही पहुंचने की जिसे मैं बैक टू बेसिक कहता हूं, जहां से हमारा स्वराज का आंदोलन शुरू हुआ था। इसलिए हमें तय करना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई किससे, अपनों से या रामलीला मैदान के सपनों से। हमारी लड़ाई रामलीला मैदान के सपनों से, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी आओ विचारें याद मिलकर ये समस्या है, हम लोग इकट्ठे हो और इन समस्या पर विचार करें। हम लोग सगे भाइयों और दोस्तों में आपस में षड्यंत्र करके दूसरी पार्टी के फूके कारतूसों में भाईचारा ढूंढने जाएंगे। जब चुनाव हुआ था तब हमने कहा था, हमसे पूछते थे लोग बाहर 70 लड़के कहां से लाओगे लड़ाने के लिए। पहले चुनाव में याद होगा मंच के लोगों को हमसे पूछा गया था, कांग्रेस ने पूछा था, बाकी सब तो लोग ठीक है, 70 लोग कहां से लाओगे लड़ाने के लिए। अब हमसे पूछते हैं कि 19 में लड़ाने के लिए 550 लड़के लड़कियां कहां से लाओगे। आम आदमी पार्टी का आखिरी कार्यकर्ता होने के नाते हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि सुनो भाजपा और कांग्रेस वालों, भारत माता भी इतनी बांझ नहीं हुई है कि 1000 अच्छे लड़के लड़कियां पैदा ना कर सके। इसलिए हमने जो साथी खोए हैं अपनी जिद के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने निजी झगड़ों के कारण, अपनी अमान्यता के कारण, अपने सुरक्षा बोध की वजह से, उन सारे आंदोलनकारी साथियों को इकट्ठा करके हमें दोबारा इस संगठन को वहीं पहुंचाना है जहां से शुरू। मुझे 20-22 लोगों में घेर कर एक दिन कहा गया कि तुम्हें इतना अपमानित कर दिया जाएगा कि तुम हाथ जोड़कर भागो। मैं आज इस मंच से कहने वाला हूं, मैं सूचना देने वाला हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं उस पर आपकी तालियां उठें। मैं अभिमन्यु हूं, मेरी हत्या में भी मेरी विजय। रामलीला मैदान के थे, रामलीला मैदान में रहेंगे। जंतर मंतर पर 4 अप्रैल को बैठे हम, आप सबके मन में क्रांति फूटी। कुछ लोग उस समय नौकरी कर रहे थे कॉरपोरेट में, समाचार जगत में, अलग पार्टियों में, उनके अंदर क्रांति नहीं जगी। हम लोग रामलीला मैदान में आए, उन्होंने देखा पर क्रांति नहीं जगी। हो सकता है क्रांति लेट पहुंची। उसके बाद हमने पार्टी बनाई, क्रांति नहीं जगी। लेकिन पहली सरकार आई तो बहुत सारे लोग हमारे बीच आए और हम ऐसे सब लोगों का स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम ये कुनबा बना नहीं बनाएंगे तो हिंदुस्तान के विजय का, आम आदमी का सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन मुझे यह भी कहना है कि हमें यह भी याद रखना है कि यह पार्टी और आंदोलन बना क्यों था। मुझसे एक वरिष्ठ साथी ने, कार्यकर्ता की, मैंने शिकायत की, भाई इसकी बात सुन लो, बहुत पुराना साथी है, आपके विधायक जी ने इसे डांट दिया, जरा इसकी बात सुन लो। तो हमारे एक नेता ने मुझसे कहा, भाई साहब ये अन्ना वाले बड़े परेशान करते हैं, इन्हें एक अलग पार्टी बना देते हैं। मैंने कहा दोस्त, पार्टी तो अन्ना वालों ने बनाई थी, आप अलग पार्टी से आ गए। तो हम अन्ना वाले हैं, हम स्वराज वाले हैं, हम पारदर्शिता वाले हैं और हम ऐसा बना रहना चाहते हैं, हम ऐसे होते रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम भी दूसरों की तरफ हो गए तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करे। मैं आज आप सबका आह्वान कर रहा हूं, अगर आप आज न जुड़े तो देश से आंदोलन का तत्व खत्म हो जाएगा। किसानों को आंदोलन उस तेजी के साथ नहीं बढ़ पा रहा जितनी उसकी आवश्यकता थी। आज आवश्यकता है कि किसानों का आंदोलन खड़ा हो। लोग अक्सर टीवी में खबर चलाते हैं कैमरे वालों के लिए आज शाम तक का काम हो गया, ये खबर चलाते हैं कि फला चंद्रगुप्त है, फला चाणक्य है। लेकिन मैं जमीन पर काम करने के अपने अनुभव से कह सकता हूं कि आप इस आंदोलन के चाणक्य हैं। आप में यह हिम्मत है कि इसे चंद्रगुप्त बनाए। अगर हम में से कोई भी अपने पक्ष से आगे पीछे हो जाए तो हमें उसी पथ पर छोड़ कर आए जहां से हम आए। हमको सूचना दे इस बात की। इसलिए हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? एक जज की हत्या हो जाए और हम ना बोले, बीएचयू में बेटियों पर लाठी पड़े और हम ना बोले, लोगों के खाने पीने के शक में दो गुंडे उनको सड़क पर पीट कर मार दे और हम ना बोले, एक महिला गौरी लंकेश को गोली मार दिया और हम ना बोले, चीन डोकलाम में कॉलोनी बना ले और हम ना बोले, तब मैं कह रहा हूं स्वर ले ताल छीन ले चाहे प्राणों से भैरव गाएंगे, हम भी अगर नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाए। इसलिए देश आपकी ओर तरफ देख रहा, प्रदेश भर के कार्यकर्ता आए हैं, उनसे कहने का अवसर है। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि सावधान हो जाइए, जोर लगाइए आंदोलन के साथी। आंदोलनों के लिए दिशा निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती, जगह जगह इकट्ठे होइए। और मैं स्वयं को आह्वान करता हूं, प्रस्तावित करता हूं कि मैं आपके बीच आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश के साथी इकट्ठे हो और तय करें कि हाशिए पर पड़े हुए अखिलेश यादव, लगभग समाप्त हुई मायावती जी और चुप हो गए कांग्रेसियों के रहते, क्या कालाधान के व्यापक भ्रष्टाचार के सामने हम घुटने टेक देंगे। हमको वहां इकट्ठा होना पड़ेगा, दिल्ली के कार्यकर्ता इकट्ठे हों और तय करें कि केंद्र सरकार के इस एजेंडे को जो उसने दिल्ली में लागू करने की कोशिश की है उसको कैसे आईना दिखाना, कैसे राज्य सरकार की शक्तियों को वापस लाने के लिए हमको लड़ना है। मैं स्वयं पिछले कुछ दिनों से हफ्ते में एक बार पार्टी कार्यालय जाने की कोशिश करता हूँ और आज से मैं आपको सूचित करता हूँ कि अगले हफ्ते से मैं हर एक दिन पूरे दिन पार्टी कार्यालय बैठूंगा। आप सब आमंत्रित वहां आकर अपनी बात करिए, वहां इकट्ठे हो जाइए, अपना संवाद करिए। हम तय करेंगे कि रोड ब्लॉक कहाँ है, कहाँ बात नहीं हो पा रही है। अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं वो यही जानने के लिए आए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लोग पूछ रहे हैं कि हम उनमें से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, अमेठी की लड़ाई में यह तय नहीं था कि हार होगी कि जीत होगी। लोग मुझसे कहते थे कि आप ये कहां मरने आ गए हैं। मैंने उन्हें बताया कि हमने महाराणा प्रताप से स्वाभिमान की लड़ाई सीखी है। युद्धों में यह तय नहीं किया जाता कि जीता कौन हारा कौन, युद्धों में यह तय किया जाता है कि गली पीठ पर खाई के छाती पर खाई। अगर आप शिवराज के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आप वसुंधरा के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आप मोदी सरकार के इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ लड़ेंगे तो आपके लिए जय पराजय मायने नहीं रखती, आपके लिए लड़ना मायने रखता है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर 20,000, 15,000, 10,000 लोग भी आएंगे आपके साथ तो वो भी आपके अपने आदमी हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। रामलीला मैदान में हमने एक कार्यक्रम किया, सरकार ने जंतर मंतर को बंद कर दिया। सरकार जंतर मंतर का आंदोलन रोक सकती है, अंदर का आंदोलन नहीं रोक सकती है। वो तो यहीं से जागता है, इसलिए आप सब इस अंदर के आंदोलन को आबाद रखें। 20 साल बाद खुद से निगाह मिलने की कुवत रखें, 20 साल बाद खुद से संवाद करने की कुवत रखें कि हम कहां से चले थे, हम कहां आए थे। इसी रामलीला मैदान में इंदिरा गांधी की आपातकाल के बाद पैदा हुई जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था और खजागत मैदान भरा हुआ था और कहा था कि लोगों ने इंदिरा जी को काल के कूड़े दान में फेंक दिया है। हम अपने लिए यह सुनने की मानसिकता में नहीं है, हम ये सुनने की मानसिकता में कि पांचवा अधिवेशन, पांचवा जन्मदिन हमने ये पंडाल घेर कर बनाया है, लेकिन हम एक दूसरे से आज वादा करके जाए कि पार्टी के छठे जन्मदिन पर हम इस छोटे मंच से ऊपर उठकर ऊंचे मंच जहां से चले थे वहीं पहुंचेंगे और 4,00,000 कार्यकर्ता यहां पर खड़ा होगा जो स्वदेश स्फूर्त चेतना के साथ आया होगा। आप सबने इतने मनोयोग से बात सुनी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और फिर आपसे वही दोहराता हूं कि अपनी मेहनत से हम तारीख को आबाद रखेंगे, वो लड़ाई होगी कि काले अंग्रेज याद रखेंगे। एक बार दोनों हाथ आकाश में उठाइए और गगन बेदी नारा लगाइए जो 7 रेस कोर्स से संसद की दीवारों टकरा कर आए। सरकारी बिल्डिंगों पर फैलाता था, याद करिए तिरंगों के दिन और दोनों